پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ, انجینئر ویگنر رابرٹس اور فیس بک پر ہماری انٹرن ماریا ناصر. ہمارے پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/hardamyasminjameelvoaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں ڈرائیونگ کی تربیت دینے اور ڈرائیونگ لائسنس دینے اور دلوانے والے ایک ادارے دی اسٹار ڈرائیونگ اسکول کی مالک اور ایک ماہر ڈرائیونگ انسٹرکٹر ستارہ خان, جو گزشتہ 14 سال سے ہزاروں لوگوں کو ورجینیا کی سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے انہیں ڈرائیونگ لائسنس دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کر چکی ہیں اور ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری مہمان ستارہ خان ایک پروفیشنل فوٹوگرافر اور ایک فوٹو اسٹوڈیو ایس کے اسٹوڈیوز کی مالک بھی ہیں اور یہاں ورجینیا, میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی میں مختلف سماجی, خصوصی طور پر شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں. اور سوابی پاکستان سے تعلق رکھنے والی اور یہاں ورجینیا میں گزشتہ 16 سال سے مقیم ہماری مہمان ستارہ خان پشاور یونیورسٹی کے آئی ٹی کے شعبے سے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ڈسٹنکشن کے ساتھ حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہماری مہمان ستارہ خان اس وقت موجود ہیں ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ستارہ خان.
وعلیکم السلام.
بے حد شکریہ ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ہفتے جب سے ہم نے امریکی ٹریفک سسٹم کے حوالے سے آپ کی تصاویر اور آپ کا تعارف اپنے پروگرام کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کیا ہے, ہمارے فیس بک پیجز پر ٹریفک بہت بڑھ گئی. بہت زیادہ لوگ امریکی ٹریفک سسٹم میں کردار ادا کرنے والی پاکستانی امریکی خاتون کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں, آپ کو سراہ رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے تو امریکی ٹریفک سسٹم کے بارے میں آپ کے لیے بہت سے سوال بھی پوسٹ کیے ہیں. اور فیس بک پیجز پر اتنے بہت سے لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہم آج سے باقاعدہ طور پر شروع کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ فیس بک کارنر, جس میں ہم شامل کیا کریں گے فیس بک کے اپنے لسنرز کا اپنے مہمانوں کے یا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک. تو اس کارنر تک پہنچنے سے پہلے ہر دم رواں ہے زندگی کی ٹریفک کا گرین سگنل آن کرتے ہیں اور امریکی ٹریفک کے بارے میں یہ معلوماتی سفر شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی جامع سوال سے. اور سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ امریکہ کے ٹریفک سسٹم کو دنیا کا ایک بہترین ٹریفک سسٹم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہاں کی کشادہ سڑکیں ہیں جہاں گاڑیاں چلانا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہاں کے ٹریفک کے سخت قوانین ہیں یا ان قوانین پر عمل کروانے والی شائستہ اور با اختیار ٹریفک پولیس ہے, یا پھر وہ جرمانے ہیں جو کسی بھی ڈرائیور کو کسی بھی غلطی پر کسی بھی انداز میں ادا کرنے پڑتے ہیں, یا پھر اس میں کسی بھی نئے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کی تربیت دے کر اسے ڈرائیونگ لائسنس دلوانے والے ڈرائیونگ اسکول یا ڈرائیونگ انسٹرکٹر کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے؟
देखें जी, ये तो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारा ज्यादा हाथ होता है। जब हमारे पास आते हैं नए ड्राइवर्स तो उनको हम सिखाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं उनको, उनको बताते हैं कि ट्रैफिक में क्या करना है क्या नहीं करना, और प्लस यहाँ के खूबसूरती मतलब खूबसूरत सड़कें, और हर 10 मिनट के बाद आपके पास यहाँ पे बिल बोर्ड लगे होते हैं कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, डायरेक्शंस होती हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम में एक फ्लो से ट्रैफिक चल रही होती है।
और जो कवानीन है उन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस भी मौजूद होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, और काफी स्ट्रिक्ट है,
काफी स्ट्रिक्ट है लेकिन बड़ी शाइस्तगी से। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस आमतौर पर सड़कों पर नजर नहीं आती, एकदम से कहीं से आ जाती है।
बिल्कुल छुपी भी होती है।
अच्छा, या उन्हें जब बुलाया जाता जब आती है।
हाँ जी, वो भी।
अच्छा, लेकिन इस ट्रैफिक को खूबसूरती से चलाने के लिए जरूरी होता है, जैसे कि हमने भी कहा कि गाड़ी चलाने की इजाजत और लाइसेंस हासिल करना, तो जब तक ये लाइसेंस ना मिले ड्राइविंग का, उस वक्त तक आप सड़क पर नहीं आ सकते, और उसके लिए कई टेस्ट भी होते हैं, तो उन टेस्टों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि अमरीका में ड्राइविंग लाइसेंस की क्या अहमियत है, और क्यों ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने से मुतालिक तरबियती स्कूल्स एक मल्टी मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है।
ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका में नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं मिलती, और पाकिस्तान में इसको शनाख्ती कार्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस 2-in-1 का काम करता है, वो आपके शनाख्ती कार्ड भी होता है और आपका लाइसेंस भी होता है कि आप अपने व्हीकल को ऑपरेट कर सकें।
तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, मसलन कहाँ कहाँ?
हर जगह एज अ आईडी, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनको शो करना पड़ता है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो आपको जॉब नहीं देंगे। फिर आपका एज एन आइडेंटिफिकेशन ये यूज होता है, कहीं पे जाएंगे तो आपको अपनी आईडी तो दिखानी पड़ेगी, तो आप अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाते हैं।
तो इसलिए ये जो लाइसेंस है ये बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, और इसके लिए बड़ी आपको तरबियत लेनी पड़ती है, किसी स्कूल में भी जाना पड़ता है और टेस्ट होते हैं। तो बताइए हमारे सुनने वालों को कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ अमेरिका में टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी तैयारी के लिए क्या सभी को जो नए ड्राइवर्स होते हैं किसी स्कूल में दाखिल होना पड़ता है, या घर का कोई फर्द या कोई दोस्त अजीज भी गाड़ी चलाने की तरबियत दे सकता है?
डिपेंड करता है, जैसे आप छोटे हमारे जो टीनएजर्स हैं 15.5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल से ही ये इनकी एजुकेशन देनी शुरू कर देते हैं, उनको ड्राइवर्स एड कहते हैं, ड्राइवर्स एजुकेशन, तो वो स्कूल में ही उसकी तरबियत हासिल करना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी 16-16.5 साल की उम्र में वो फिर हमारे पास आते हैं और फिर हम उनको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करते हैं। और जहाँ पे अडल्ट का ताल्लुक है तो अडल्ट हमारे पास भी आ सकते हैं, हम उनको ड्राइवर्स एजुकेशन की तरबियत दे सकते हैं, और फिर उनको हम सड़क पे लेके जाके उनको हम सिखाते हैं बाकायदा, बिल्कुल स्क्रैच से उनको बताते हैं कि क्या करना है, ट्रैफिक के कवानीन क्या है, कैसे गाड़ी को संभालना है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी एज ग्रुप का है क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो हम वहां से उनको
उसको सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले उनको एक रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है ताकि उनके पहले उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में, ट्रैफिक सिस्टम के बारे में, गाड़ी चलाने के जो रूल्स हैं, पहले उनको उन्हें सीखना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकली उनको लाते हैं सड़क पर सिखाने के लिए।
100% उसको पहले उनको लर्नर्स परमिट दिया जाता है अडल्ट को, जो वो 2 महीने के लिए अपने पास रखते हैं, और उन 2 महीनों में वो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते हैं प्रैक्टिकली। पहले तो रिटन टेस्ट हो गया, वो जब पास कर लेते हैं लर्नर परमिट मिल गया, लर्नर परमिट के बाद वो 2 महीने गाड़ी सीखते हैं, और उसके बाद फिर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उनका।
और वो टेस्ट पास भी कर सकते हहैं, और कितनी बार वो टेस्ट दे सकते हैं?
3 दफा दे सकते हैं लर्नर परमिट का टेस्ट, जो कि रिटन टेस्ट होता है। अगर 3 दफा फेल हो जाए तो उनको दोबारा हमारे पास आना पड़ता है और 8 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है। अच्छा। उसके बाद फिर हम उनको सर्टिफिकेशन देते हैं, वो दोबारा DMV जाके दोबारा से टेस्ट ले सकते हैं।
और DMV वो इदारा है वर्जीनिया का जहाँ के लोग टेस्ट देते हैं ड्राइविंग का।
हाँ जी, ये एब्रीविएशन है डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स।
तो ये जो इदारा है सरकारी होता है या प्राइवेट भी होता है?
DMV तो सरकारी है।
अच्छा, तो उसे हुकूमत
ड्राइविंग स्कूल जी।
अच्छा, और ड्राइविंग, और उसे ये इख्तियार हुकूमत की तरफ से मिलता है कि वे लोगों के ड्राइविंग टेस्ट लिए और उन्हें लाइसेंस जारी करे?
बिल्कुल।
अच्छा, और इसमें फिर जो प्राइवेट इदारे हैं आपकी तरह के जो स्कूल्स हैं वो भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं?
हाँ जी बिल्कुल, हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम मतलब अगर आप देखे जाए तो हम स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट ने हमें परमिशन दी है कि हम एडल्ट्स का और टीनेजर्स का हम लाइसेंस इशू कर सकते हैं।
तो जो ड्राइविंग स्कूल्स खोलते हैं क्या उनको भी कुछ शराइत पूरी करनी होती है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कैसे खुलता है कोई ड्राइविंग स्कूल?
बिल्कुल जी, ये आपको कोर्स करना पड़ता है। यहाँ मैंने तो नोवा से किया था, नॉर्दर्न वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज से, वहाँ पे इनका कोर्स होता है, वो कंप्लीट करते हैं, फिर बाकायदा आपको स्टेट पुलिस जो होती है वो आपका टेस्ट लेती है।
अच्छा,
देखते हैं कि आपको खुद कितनी गाड़ी चलानी आती है, उसके बाद फिर जाके इंस्ट्रक्टर लाइसेंस मिलता है।
अच्छा, और उसके बाद स्कूल खोलने के लिए?
स्कूल खोलने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। तो पहले आप लाइसेंस लेते हैं स्टेट से, उसके बाद फिर अपने आपको बॉन्ड कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उसके बाद आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं।
अच्छा, तो ये एक तरह से कंपनी आपने खोली हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि अभी तो आपने कहा कि जो स्कूल में ही बच्चों को 15.5 साल की उम्र में सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वैसे क्या खास एज लिमिट क्या होती है कोई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की?
मिनिमम जो है 15.5 साल की उम्र से, ये 15.5 साल की उम्र में ये परमिट ले सकते हैं, फिर वो परमिट उनको 9 महीने रखना पड़ता है, उसको मैच्योर करना पड़ता है, जिस 9 महीने में वो 45 घंटे अपने माँ बाप के साथ गाड़ी सीखते हैं।
अच्छा,
तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 15.5 साल है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। मेरे पास अभी 70 साल की एक खातून भी आई थी, उनको भी मैंने सिखाई है, उन्होंने भी ड्राइवर्स लाइसेंस लिया है, तो डिपेंड करता है।
तो आमतौर पर कितने दिन लगते हैं कि एक नया ड्राइवर यहाँ की सड़कों पर गाड़ी चलाता हुआ दाखिल हो जाता है?
एज पे डिपेंड करता है जी, मेरे पास टीनेजर्स आते हैं तो 5 दिन में रेडी हो जाते हैं, कुछ टीनेजर्स आते हैं वो 10 से 11 दिन भी लगा देते हैं, एडल्ट थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया से आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो वो गाड़ी डिफरेंट साइड पे चलाते हैं सड़क की, तो उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, उनको मतलब कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, उनको 10 दिन लग जाते हैं, कुछ को 20 दिन लग जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी सीखता है।
अच्छा, फिर ये कि अमेरिका में तो ऐसे पूरी दुनिया के लोग आबाद हैं और बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लाइसेंस ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या कोई इशारों की जबान के जरिए वो सीखते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है कि 2-3 सालों से इन लोगों ने नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं, तो अभी आप अरेबिक में भी टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि पश्तो में भी दे सकते हैं।
अच्छा, वाह।
हाँ जी,
तो कितने ड्राइवर्स हर रोज वर्जीनिया की सड़कों पर आ जाते हैं लाइसेंस लेकर, कुछ अंदाजा?
मतलब मैं तो कहूँगी कि 100s में से आते हैं, काफी लोग आते हैं
डेली, और जब जाओ तो वो वहाँ रश लगा हुआ होता है टेस्ट देने के लिए आने वालों के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल,
और जरूरी नहीं कि वो सब उस दिन पास भी हो जाएं।
नहीं, ये जरूरी नहीं।
अच्छा, तो ये और ये कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हम उसकी बात भी करेंगे कि मनसूख किस तरह होता है, लेकिन पहले अब आए इस तरफ के जो ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जब ट्रैफिक की सड़कों पर आप लोग आ जाते हैं तो फिर क्या सिलसिला शुरू होता है और रोल शुरू होता है ट्रैफिक पुलिस का, तो जो इन लाइसेंस वाले ड्राइवर्स को कंट्रोल करते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं या हादसात की वजह बनते हैं, तो अमरीका में ट्रैफिक पुलिस के क्या इख्तियारात होते हैं?
अमेरिका की पुलिस के इख्तियारात बहुत हैं, वो आपका लाइसेंस रिवोक भी कर सकते हैं, आपसे लाइसेंस छीन भी सकते हैं, आपको अंदर भी करा सकते हैं।
तो कुछ खास कोई ऐसे रूल्स होते हैं, अगर वो ट्रैफिक का जो सिपाही है वो किसी को गलती करते हुए पकड़ ले तो ड्राइवर्स को क्या करना पड़ता है?
वो पहले तो पुल ओवर करना पड़ता है और बिल्कुल आप अपने हाथ स्टेयरिंग पे रखेंगे, उनको विजिबल होना चाहिए और जब वो बात करेंगे तो आपको सुनना चाहिए, पहले आपसे रजिस्ट्रेशन और गाड़ी की कागजात मांगते हैं वो, और गाड़ी से आप उतर नहीं सकते, क्योंकि अगर गाड़ी से उतरे तो फिर आपको उसकी बड़ी सजा है।
अच्छा अच्छा, ये उसकी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की, सार्जेंट की?
बिल्कुल बिल्कुल, सार्जेंट जो आएंगे आपके पास, अगर जब वो आपको पुल ओवर करते हैं तो वो पहले अपना फिंगरप्रिंट आपकी गाड़ी पे छोड़ते हैं, हमेशा आपकी गाड़ी टच करेंगे।
अच्छा,
हाँ जी, ये इनका एक रूल है।
अच्छा, वो क्यों करते हैं टच?
क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सिपाही को कुछ हो गया तो लास्ट आपकी गाड़ी उन्होंने टच की हुई थी।
अच्छा अच्छा,
तो वो उनके लिए एविडेंस होता है, वो अपना फिंगरप्रिंट हमेशा आपकी गाड़ी पे छोड़ते हैं।
तो फिर जो भी वो फाइन करता है और उस वक्त फौरी तौर पर आपको अदा करना होता है कि कहीं अदालत में जाकर या ऑनलाइन अदा करना पड़ता है?
बिल्कुल, जब आपको वो टिकट देते हैं तो उस पे डेट होती है, अदालत की भी तारीख होती है, आप खुद भी फाइन पे कर सकते हैं, टेलीफोन के जरिए भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी, इनकी वेबसाइट है वहां पे भी जाके पे कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कन्विक्ट हुए थे।
और उसे जो अगर वो पुलिस वाला कोई आप समझते हैं कि उसने आपको गलत फाइन किया है, तो फिर वो आप अदालत में जाकर उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, आप प्लीड नॉट गिल्टी कर सकते हैं, अपने साथ वकील लेके जा सकते हैं और उसको उसके लिए लड़ भी सकते हैं।
अच्छा, और अगर अगर आप साबित कर दें कि आप पर गलत जुर्माना लगा, तो फिर वो कैंसिल भी हो जाते हैं टिकट?
बिल्कुल जी, वो विड्रॉ कर देते हैं।
अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा क्या उसूल हैं जिनकी वजह से अमेरिका में सड़कों पर ट्रैफिक के हादसा से बचने में मदद मिलती है?
उसूल बहुत हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, सड़कें इतनी खूबसूरत हैं आपके, मतलब इट्स वेरी इजी कि यहाँ पे ड्राइविंग बहुत आसान है। और काफी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनसे लोग काफी डर के गाड़ी चलाते हैं, तो इसीलिए हर एक इंसान जो है उसूलों पे ही चल रहा है।
और जाहिर है कि उसकी इतनी तरबियत होती है कि सड़कों पर आने ही नहीं देते जब तक कि वो अच्छी तरह से सीख ना लें।
तो बिल्कुल उनको रटा लगा के पहले सारा कुछ सिखाते हैं, उसके बाद उनको सड़क पे लाया जाता
है। हर कोई सड़क पर नहीं आ सकता गाड़ी लेकर। तो कैमरों का भी कोई रोल है जो सड़कों पर नस्ब कर दिए जाते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में या हादसा को रोकने में?
बिल्कुल है, यहाँ पे हर मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह नहीं है, काफी जगहों पे स्पीडिंग कैमरास लगे हुए हैं, रेडार्स लगे हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप 55 की स्पीड पे, अगर वहाँ पे पोस्ट है कि 55 पे जाना है और आप 65 या 75 पे जा रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली तस्वीर खिंच जाती है लाइसेंस प्लेट की, और जिनके जो भी रजिस्टर्ड है उस गाड़ी के उनके नाम एक खत आ जाता है घर पे, और फिर आपको वो चलान देना पड़ता है।
अच्छा, मोहब्बत नामा घर में पहुंचता है।
ये मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन
जब खत आपने कहा तो फिर इसलिए। अच्छा, तो अगर कोई मुख्तलिफ, जाहिर आपने कहा है कि सजाएं हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी कानून शिकनी किसको कंसिडर किया जाता है यहाँ पर?
फिर से बोलिएगा।
सबसे बड़ी जो कानून शिकनी है, कानून तोड़ने की जो सबसे बड़ी मद है, वो क्या होती है, किसको कहते हैं ये सबसे बड़ी कानून शिकनी ट्रैफिक की?
ट्रैफिक की, अब जैसे रेड लाइट क्रॉस कर दिया तो इसको बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा एक है कि अपनी गलती करती, क्योंकि रेड लाइट क्रॉस करने का मतलब ये है कि आप इनकमिंग ट्रैफिक के साथ, मतलब उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो लाइट्स को फॉलो करना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है।
और यही वजह है कि यहाँ पर लोग इतने आदी हो जाते हैं कि रात के 1-2 बजे भी अगर अकेली सड़क पर गाड़ी खड़ी है और सिग्नल लाल है तो खड़े हैं, जब तक कि वो
बिल्कुल,
कभी कभी तो सिग्नल खराब होता है और वो हरा होके ही नहीं देता, फिर भी खड़े रहते हैं लोग।
हाँ, क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता कि ट्रैफिक लाइट के सेंसर होते हैं, और आप जब तक सेंसर के रीच में नहीं आएंगे, गाड़ी आप वो लाइट जो है वो आपके लिए ग्रीन नहीं होगी।
तो लेकिन वो बेचारे खड़े रहते हैं कि कहीं टिकट ना मिल जाए, और कोई किसी जानिब से अभी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी में पां करता हुआ पहुंच ना जाए। अच्छा, पता उस वक्त लगता है कि हमने कोई गलती की है जब पुलिस वाला पीछे चलना शुरू कर देता है हॉर्न बजाकर,
जब उनकी लाइटें ऑन हो जाती है।
हाँ, लाइटें ऑन हो जाती है। अच्छा, तो ज्यादातर यहाँ पर आपने क्या देखा कि हादसे किस वजह से होते हैं अमरीका की सड़कों पर?
रेस्टलेस नाइट, लोग रात को सोते नहीं है टाइम पे, और सवेरे उनको देर हो रही होती है, सारे काम पे जा रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा कभी, आप जब काम पे जा रही होती है तो लड़कियां अमूमन जहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है तो अपना मस्कारा लगाना शुरू कर देती है
क्योंकि घर में टाइम नहीं होता मेकअप का, और
टाइम नहीं होता,
और आधे घंटे से।
तो ये चीजें जो है ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बारिश के जब हल्की बारिश पड़ रही होती है वो भी बहुत खतरनाक होती है, वो भी बहुत सारे एक्सीडेंट का कॉज है।
और इसके अलावा आपने ये भी कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं उस
जी, बिल्कुल, टेक्स्ट मैसेजेस, हैंडहेल्ड जितने भी डिवाइसेस हैं ये बहुत, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं टेक्स्ट मैसेजेस की वजह से और फोन सुनने की वजह से। अभी हमारे वर्जीनिया में नहीं, लॉ नहीं पास हुआ कि टेक्स्ट मैसेजेस अंडर 18 के लिए है लॉ, कि अंडर 18 हाथ में फोन अगर उनके हाथ में है और पुलिस ने उनको पुल ओवर कर लिया तो उसकी बहुत बड़ी सजा है, एक रात जेल में भी काटनी है, और $800 फाइन भी है।
$800 फाइन भी है, और ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख भी हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है, वो रिवोक भी कर सकते हैं।
और अगर ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख हो जाए तो फिर आप कहीं के नहीं रहते?
बिल्कुल, پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے گیا ہے, منیمم 6 مہینے کے لیے جاتا ہے.
اچھا اچھا.
اور دوبارہ سے پھر آپ کو ڈرائیور ایجوکیشن اور بیہائنڈ دی ویل اور یہ سب کچھ کرنا دوبارہ سے پڑتا ہے, پھر سے آپ ٹیسٹ دیتے ہیں, پھر سے سارا کچھ زیرو پہ آ جاتا ہے.
زیرو پہ آ جاتا ہے. او ہو ہو. تو اتنی اہمیت ہے اس ڈرائیونگ لائسنس کی جس کو ایشو کرتی ہیں ہماری مہمان ستارہ خان, جن کا اپنا ایک اسکول بھی ہے, بہت اچھی انسٹرکٹر بھی ہیں اور بڑے 14 سال سے مصروف ہیں ورجینیا کی سڑکوں پر نئے ڈرائیورس کو گاڑی چلانے کے لیے لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ابھی یہ کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری گفتگو بھی جاری ہے ستارہ خان, لیکن ہمارے سننے والوں کو ہم ایک بار پھر بتا دیں کہ ستارہ خان ہیں کون. تو آئیے سنتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں ڈرائیونگ کی تربیت دینے اور ڈرائیونگ لائسنس دینے اور دلوانے والے ایک ادارے دی اسٹار ڈرائیونگ اسکول کی مالک اور ایک ماہر ڈرائیونگ انسٹرکٹر ستارہ خان, جو گزشتہ 14 سال سے ہزاروں لوگوں کو ورجینیا کی سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے انہیں ڈرائیونگ لائسنس دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کر چکی ہیں اور ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری مہمان ستارہ خان ایک پروفیشنل فوٹوگرافر اور ایک فوٹو اسٹوڈیو ایس کے اسٹوڈیوز کی مالک بھی ہیں اور یہاں ورجینیا, میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی میں مختلف سماجی, خصوصی طور پر شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں. اور سوابی پاکستان سے تعلق رکھنے والی اور یہاں ورجینیا میں گزشتہ 16 سال سے مقیم ہماری مہمان ستارہ خان پشاور یونیورسٹی کے آئی ٹی کے شعبے سے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ڈسٹنکشن کے ساتھ حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو. ہماری مہمان ستارہ خان اس وقت موجود ہیں ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. جی ستارہ خان, بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ امریکہ کی سڑکوں پر ٹریفک کے دوران پیدل چلنے والوں کا کتنا احترام ہوتا ہے؟
بہت زیادہ. پیڈیسٹرینز کا تو یہاں پہ لا ہے باقاعدہ کہ ہمیں ان کے لیے ییلڈ کرنا ہے, ہمیں ان کے لیے ٹریفک بالکل رکنی ہے.
اور وہ باقاعدہ وہ سگنل بھی روک سکتا ہے پیدل چلنے والا, جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں؟
بالکل, ان کے لیے باقاعدہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ پاتھ سے نیچے اتر گئے تو آپ کو گاڑی روکنی ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کا رائٹ آف وے ہے.
اسی طرح جو اسکول بسیں ہیں, جو فائر گاڑیاں ہیں اور ایمبولینسیں ہیں, ان کے لیے بھی خاص رولز ہیں؟
بالکل بالکل, جیسے ہی آپ سنتے ہیں ان کے سائرن کی آواز تو آپ کو ان کے لیے سڑک بالکل کلیئر کرنی پڑتی ہے, اور اگر نہیں کی تو اس کا بھی پینلٹی ہے.
اور اسکول بسوں کے لیے جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو.
اسکول بسوں کے لیے بہت اچھا اہتمام ہے, کیونکہ وہاں اس میں بچے ہوتے ہیں اور ان کا ایک اسٹاپ سائن ہوتا ہے, جیسے اسکول بس رکتی ہے آپ کا اسٹاپ سائن آن ہو جاتا ہے, ریڈ لائٹس آن ہو جاتی ہے اسکول بس پہ, اور آپ کو 100 فیٹ کی دوری پہ گاڑی روکنی پڑتی ہے, اور گاڑی بالکل آپ ہلا نہیں سکتے جب تک ڈرائیور وہ اسٹاپ سائن کی لائٹ نہ آن آف کر دے اور اسٹاپ سائن ہٹا نہ دے, تو آپ گاڑی بالکل موو بھی نہیں کر سکتے.
اچھا, اور اس ڈرائیور کے بھی بڑے اختیارات ہوتے ہیں جو اسکول بس چلا رہا ہوتا ہے؟
بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس ریڈیو ہوتا ہے, وہ کبھی بھی پولیس کو اطلاع کر سکتا ہے.
اور وہ خود بھی کوئی فائن کر سکتا ہے؟
نہیں, وہ خود تو فائن نہیں کر سکتا, لیکن وہ آپ کی شکایت ضرور کر سکتا ہے, اور ان کے پاس کیمراز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اسی وقت آپ کا اسنیپ شاٹ لے لیتے ہیں یا آپ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں.
اچھا اچھا, تو یہ بہت سے شہر ہیں یہاں امریکہ میں جہاں کے ہارن بجانا منع ہے, تو پھر کیسے وہاں پر کیسے انتباہ کر سکتے ہیں اگلے ڈرائیور کو یا پچھلے ڈرائیور کو ہارن کے بغیر؟
ہارن یہاں پہ بہت کم بجاتے ہیں, بلکہ بجاتے ہی نہیں ہیں, غصے میں کبھی آ کے کوئی اگر ہارن بجاتے تو دیٹس اباؤٹ اٹ, ورنہ یہاں پہ ہارن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اتنا ٹریفک سسٹم جو ہے اتنا سسٹمیٹیکلی چلتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہارن کی کبھی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے, اور یہاں پہ لوگ بھی بہت پیشنٹ ہیں. بڑی پیشنٹ, مطلب وہ انتظار کرتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, تو ہارن بجانے کی کوئی ضرورت پڑتی نہیں ہے.
اچھا, اور اگر جو یہاں کے جو سڑکوں پر جو سائنز ہوتے ہیں, آپ उनको कैसे कंपेयर करेंगी, जैसे हमारे पाकिस्तान में या दूसरे हमारे मुल्कों, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के जो दूसरे मुल्क हैं उनमें जो ट्रैफिक के साइंस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने यहाँ पर होते हैं, तो कोई खास साइंस
बिल्कुल
जिनका आप इस पर जिक्र करना चाहें जो दूसरे मुल्कों में नहीं होते?
मतलब यहाँ पे साइंस हर चीज के लिए एक साइन है। अगर आपको एग्जिट लेना है तो 10 दफा आपको वो एग्जिट याद कराया जाएगा ताकि आप घूमे ना। हर चीज का, अगर हॉस्पिटल है तो उसका एक 10 दफा साइन लगा हुआ होगा कि इस तरफ आपका हॉस्पिटल है, या कोई भी चीज, आप यहाँ पे घूम ही नहीं सकते हैं क्योंकि साइंस हर कदम पे आपके लिए साइन है। तो मैं कहूंगी कि किसी और मुल्क में अगर मैं कभी गई भी हूं तो मैंने इतने साइंस नहीं देखे, और मेरा ख्याल है कि ये साइन की वजह से ही हम लोग ना घूमते हैं और ना ट्रैफिक जैम होता है, ना कोई गलत यू टर्न मार रहा होता है।
बिल्कुल, और उसकी वजह एक ये है कि फिर जुर्माने और जेब खाली भी होती है अगर आप
हाँ जी बिल्कुल।
अच्छा तो आपको तो इतने अरसे से आप ड्राइविंग लाइसेंस देने में मदद कर रही हैं, बहुत सारे बच्चों
जी
की भी की होगी, यूथ की भी की होगी, बड़ों की भी की होगी, तो कोई वापस भी आया, कुछ जिनको आपने लाइसेंस दिया उनके लाइसेंस मंसूख भी हुए अब तक कभी?
नहीं, अभी तक मेरे पास तो नहीं आए, लेकिन
अच्छा
अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई वापस, मेरे पास क्लाइंट्स बहुत आए, रेफरल्स बहुत आए हैं। मेरा पहला पहला जो क्लाइंट था, बच्चा था, उनका आज से 14 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उनके अब आगे से बच्चे हो चुके हैं। दे कीप इन टच, अच्छे अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, आते हैं, रेफरल्स देते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई अभी तक ऐसा कोई क्लाइंट मेरे पास वापस आया जिसका लाइसेंस मंसूख हो गया हो।
अच्छा, बिल्कुल। तो आपने जब ये स्कूल खोला तो किन किन मराहिल से गुजर कर आपने इस स्कूल को खोला?
बैक देन बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था, पढ़ना भी था, प्रेजेंटेशंस भी देनी थी, और कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ जाएं क्या करें, तो इट वाज काफी मुश्किलात भी हुई, लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और चल
नहीं,
पड़ा।
लेकिन आपने अपने लिए ड्राइविंग का स्कूल का शोभा ही क्यों चुना, कोई और क्यों? आप तो हार्डवेयर इंजीनियर में, आप इंजीनियरिंग की आपने डिग्री ली थी पिशावर यूनिवर्सिटी से, और आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ी हुई थी, लेकिन आपने उन सबको छोड़कर ड्राइविंग स्कूल को अपनाया, तो क्या वजह? बहुत माहिर थी गाड़ी चलाने में आप?
हाँ, मुझे हमेशा घर से डांट भी पड़ती थी कि मैं गाड़ी बहुत तेज चलाती थी, लेकिन अब मैं नहीं चलाती हूँ क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर बन चुकी हूँ और अपना लाइसेंस नहीं गवा सकती। छोटी उम्र में ही गाड़ी चलानी सीख ली थी, मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने सिखाई थी। तो लेकिन उसके बाद जब आईटी में काम कर रही थी मैं, तो वहां पे 9/11 के बाद फिर हम लोग जॉब्स चली गई, बहुत मार्केट डाउन हो गई थी, आईटी में जॉब नहीं मिल रही थी, तो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने बताया, तो बस इसी शोबे में फिर शुरू हो गए। और
और
प्लस न्यूयॉर्क से यहाँ पे जब मैं माइग्रेट होके आई तो देखा यहाँ पे कम्यूट का जो मसला बहुत ज्यादा था, कि बसें इतनी नहीं है, टैक्सी इतनी नहीं है, टैक्सी है भी तो बहुत महंगी है, और हमारी पाकिस्तान की जो खवातीन हैं अगर उनको ड्राइविंग चलानी नहीं आती तो देर पैरालाइज्ड, वो नहीं जा सकती, ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर सकती, अपने दिन के काम नहीं उनके रुके रहते हैं जब तक उनके स्पाउस वापस नहीं आते। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि इट वाज अ गुड डिसीजन जो अभी तक चल रहा है,
और
बहुत
उसमें
सारी
आप खुश भी
खवातीन का
हैं।
हेल्प भी हुई।
तो खवातीन इंस्ट्रक्टर्स का क्या रेशो है यहाँ पर अमेरिका में, और खवातीन
बहुत
जो
कम,
स्कूल जो ड्राइविंग स्कूल चला रही हैं उनमें खवातीन कितनी होती हैं?
बहुत कम।
अच्छा,
हाँ जी बहुत कम,
और इंस्ट्रक्टर्स भी
हर
कम होती हैं?
हाँ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं खवातीन हैं यहाँ पे, बहुत हैं, बहुत तो मैं नहीं कहूंगी कि हैं, लेकिन बहुत कम हैं। हाँ
तो
जी
ये जो कहते हैं कि ड्राइविंग स्कूल जो है एक बहुत मल्टी मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, तो इसमें जो कामयाब बिजनेस का सबसे अहम रास्ता क्या आप समझती हैं, किस किस शोबे में यहाँ पर ये जॉब हो सकती है या बिजनेस हो सकता है या कामयाबी हो सकती है?
ड्राइविंग स्कूल के लिहाज से ये, इसको मैं जॉब नहीं कहूंगी, मतलब ये आप खुद अपना एक इदारा खोल लेते हैं और फिर अपने लिए ही काम करते हैं, योर योर ओन बॉस। आप इसको जॉब कहना, जॉब आई डोंट नो कि किस लिहाज से इसको मैं जॉब कहूँ,
बिजनेस कह
लेकिन
सकते हैं इसको? हाँ
हाँ बिजनेस है ये। हाँ जी,
तो
जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डीएमवी के साथ, और डीएमवी हम मतलब डीएमवी हमारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके सर्टिफाइड हैं हम लोग।
तो
तो
नहीं, लेकिन क्या तरीका क्या होता है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रमोट करती हैं?
प्रमोशन देखिए, हमारा वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा होता है, रेफरल ज्यादा होते हैं, हाँ जी, गूगल पे, येल्प पे, ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब हम लोग मार्केट में हैं, लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा हमारा रेफरल प्रोग्राम ज्यादा चलता है।
अच्छा, यानी जो एक एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को
बिल्कुल
बताया, और उस
बिल्कुल
एरिया में जब भी कोई नया ड्राइवर शुरू हुआ सीखने के लिए तो आपको आपके पास वो पहुंच जाता है।
बिल्कुल आ जाता है।
अच्छा, तो बेहद शुक्रिया सितारा खान। एक जैसे कि हमने कहा कि हमने आज से कोशिश कर रहे हैं कि एक फेसबुक कॉर्नर हम शुरू कर दें, एक प्रोग्राम जिसमें हम जो फेसबुक पर हमारे लिसनर्स हैं वो हमारे मेहमानों के लिए जो सवाल पोस्ट करते हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। तो लीजिए, हम अपने ज़िंदगी ये जो है ट्रैफिक के बारे में इस मालूमाती सफ़र को ब्रेक लगाते हैं और शामिल करते हैं अपने फेसबुक के लिसनर्स के सवालों को आज के प्रोग्राम में।
ठीक है।
जी, फेसबुक कॉर्नर में हमारा सबसे पहला सवाल पोस्ट किया जमील मलिक ने हरदम रवाया जिंदगी के फेसबुक पेज पर कि क्या अमेरिका में ट्रैफिक को पुलिस कंट्रोल करती है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम?
पुलिस ऑब्वियसली।
और जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यही है कि वो सिग्नल्स वगैरह लगे हुए हैं, इशारे लगे हुए
सिग्नल्स
हैं।
तो लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी आपको पता है कि लोग इशारे भी तोड़ देते हैं।
हाँ बिल्कुल। शाकिरुल्ला जान ने पूछा कि क्या अमेरिका में कोई ऐसा रियासत या कोई ऐसा शहर है जिसका ट्रैफिक सिस्टम और कानून पाकिस्तान के ट्रैफिक सिस्टम के साथ मिलते जुलते हों? कोई नहीं।
नहीं।
अच्छा, और जहां जेब ने लिखा कि पाकिस्तान में कारें और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बहुत रश करती हैं, तो अमेरिका में क्या प्राइवेट गाड़ियों के रश को कम करने का कोई तरीका है?
प्राइवेट गाड़ियों नहीं, रश को कैसे, कहाँ से कम होगा, मतलब सारे सारे सड़क पे आते हैं, मोटरसाइकिल्स की अपनी लेन होती है, गाड़ियों की अपनी लेन होती है, रश आवर तो हर जगह होता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं?
उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके कंट्रोल करने का
हाँ
तरीका यह है कि सड़कें और बना दो जो यहाँ बनती
या
रहती हैं।
तो हाँ, जो मोटरवेज हैं या यहाँ पे जो हाईवेज हैं उनकी लेन एक्सटेंड कर दें।
हाँ, तो बस
हाँ
यही तरीका है रश को कम करने का,
यही एक
लेकिन जिसने
तरीका है।
आना है उसने तो सड़क पर आना है
बिल्कुल
और रश को सबने बर्दाश्त करना है जब रश का वक्त होगा तो।
एग्जैक्टली। हाँ जी।
अच्छा, सरदार अरशद हलीम ने पूछा कि क्या सिर्फ कुशादा सड़कें या कानून ही बेहतरीन ट्रैफिक के लिए काफी हैं?
100%
ठीक,
कवानीन कवानीन होंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा ना, कवानीन नहीं होंगे तो ट्रैफिक कहाँ कंट्रोल होगा, और सड़क सही होगी तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, पॉट होल्स होंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी उछलेगी, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये तो बहुत जरूरी
लेकिन
है।
मेरा ख्याल है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कवानीन की मौजूदगी नहीं बल्कि उन पर अमल दरामद भी जरूरी है कि सिर्फ कवानीन की मौजूदगी ही जरूरी है?
दोनों।
दोनों है। अच्छा, मियां मोहम्मद शेख ने मुल्तान से पूछा कि क्या अमेरिका के ट्रैफिक रूल्स इतने सादा या इतने मुश्किल हैं कि पाकिस्तान में नाफिज नहीं हो सकते?
बिल्कुल हो सकते हैं, कोई सुने तो
कोई
तब।
सुने तो तब। नसीर वानी ने भारतीय कंट्रोल के कश्मीर से पूछा कि अगर कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे क्या सजा मिलती है? इसके कुछ जवाब तो आप दे चुकी हैं, कुछ और बताइए।
डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कन्विक्ट हुए हैं। $25 का भी आपको टिकट मिल सकता है, और आपको 500 और 1000 का और 5000 का भी मिल सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या गलती क्या थी।
तो स्पीड से ज्यादा ड्राइविंग करने की क्या सजा होती है इन्होंने पूछा है, और 18 साल से कम उम्र के नौजवान क्या गाड़ी चला सकते हैं? इसका जवाब
बिल्कुल चला सकते हैं। मैंने पहला सवाल मिस हो गया मेरे से,
ज्यादा यानी स्पीड से ज्यादा ड्राइविंग करने की क्या सजा होती है?
रेकलेस, वो तो रेकलेस ड्राइविंग है, आपके रैकेट पे 6 पॉइंट आ जाते हैं जो कि 11 साल रहते हैं आपके रैकेट पे। और 18 साल की उम्र से बिल्कुल कम बच्चे गाड़ी चलाते हैं, अभी मैं पहले भी इस बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि 15 साल, 15.5 साल की उम्र में बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं अपनी ड्राइविंग की।
लेकिन वो लर्निंग लाइसेंस लेते हैं जिसमें किसी ना किसी के साथ बैठ कर गाड़ी चलाते हैं, अकेले
बिल्कुल
नहीं चला सकते वो।
अकेले नहीं चला सकते।
हाँ, और आरजे मलिक ने पूछा है कि अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है?
यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मतलब सिस्टमेटिकली चलती है, और जितने पैसेंजर वहाँ पे आ सकते हैं उतने ही पैसेंजर वो बिठाएंगे, उससे एक पैसेंजर ज्यादा ना कम।
बल्कि ज्यादातर तो ये जो पब्लिक की गाड़ियां हैं वो खाली ही नजर आती हैं, बहुत कम लोग
खाली
होते
ही
हैं।
नजर आती
हाँ,
है।
क्योंकि
हाँ बिल्कुल।
यहाँ पर हर आदमी के पास अपनी आमतौर पर गाड़ी होती है।
बिल्कुल
गाड़ी उसी तरह है जिस तरह एक जरूरत की चीज यहाँ पर है कोई।
हाँ जी, ये यहाँ पे वांट नहीं है, यहाँ पे नीड है।
यहाँ पर नीड है और नीड जो है उसको पूरा करना बहुत आसान होता है कि गाड़ियाँ बड़ी आसान किस्तों में नई पुरानी जितनी भी आपकी इस्तात हो आप खरीद सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है।
लोन भी मिल जाते हैं तो गाड़ी को खरीदना कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता यहाँ पर। अच्छा, मुंतजर सबजार अली ने गुलगाम भारतीय कंट्रोल कश्मीर से पूछा कि क्या अमेरिका में ये जरूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी स्कूल से ही हासिल किया जाए?
नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, आप खुद भी सीख सकते हैं। लर्नर परमिट ले लें, 2 महीने वो आपको देते हैं, आप गाड़ी खुद किसी के साथ भी लाइसेंस ड्राइवर हो, एज लॉन्ग एज के जिसे आप सीख रहे हैं वो लाइसेंस ड्राइवर है।
अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो या रिन्यू में देर हो जाए तो क्या सजा होती है? इन्हीं ने पूछा है सबजार अली।
हाँ जी, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और रिन्यू नहीं हुआ तो आपको दोबारा से लर्नर परमिट लेना पड़ेगा, दोबारा से रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा।
और रिन्यू में देर हो जाए तो क्या सजा है कोई?
नहीं, सजा कोई नहीं है।
सजा कोई नहीं है।
हाँ जी,
तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस एक्सपायर्ड है और आप उसको लेकर गाड़ी चला रहे हैं तो कोई सजा नहीं मिलेगी?
उसको लेके अगर चला रहे हैं तो बिल्कुल सजा है, वो फिर ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस में कन्विक्शन होती है और उसकी सजा फिर डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में चला रहे थे कि कमर्शियल एरिया में या हाईवे पे चला रहे थे, तो वो फिर डिपेंड करता है कि कहाँ पे थे, कहाँ पे पकड़े गए, तो उसकी फिर डिफरेंट सजाएं हैं।
और इन्होंने एक सवाल ये भी लिखा था कि क्या लोग ट्रैफिक के फाइन को ऑनलाइन अदा कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं।
अच्छा, सरगोधा से सोहेल कासिम ने पूछा कि क्या अमेरिका में गधा गाड़ी क्रॉसिंग होती है?
जी बिल्कुल होती है।
कैसे होती है बताइए ना, अमेरिका में गधे गाड़ियां होती हैं?
हाँ, अमेरिका में भी बिल्कुल होती है क्योंकि सबर्ब एरियाज में फार्म्स हैं और यहाँ पे एक आमिश कम्युनिटी भी है जहाँ पे गाड़ियां नहीं वो लोग इस्तेमाल करते, वो लोग अभी भी टांगे और घोड़े और ये सवारियों पे कम्यूट करते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे गधा गाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का या किसी भी ट्रेलर का वहाँ पे साइन जरूर होता है।
नहीं तो वो क्यों उन्होंने इस चीज को अपनाया हुआ है अभी तक?
बस वो अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहते हैं और वो उनको टेक्नोलॉजी से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वहाँ पे लाइटें भी नहीं है आज तक, उधर लालटेन चलते हैं।
तो ये कहाँ है, ये एरिया किधर है?
ये फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अराउंड यहाँ पे है।
अच्छा, इसे तो देखना चाहिए ना, अभी तक हम महरूम हैं इसे।
बहुत इंटरेस्टिंग जगह है।
अच्छा, इस्लामाबाद से अदनान अहमद ने पूछा है कि अमेरिका में सालाना कितने ट्रैफिक के हादसे होते हैं?
हाँ, ये डिपेंड करता है, अभी 2014 में फेटल क्रैशेस जो हुए हैं 30,000 के करीब हुए हैं और 2013 में भी 30,000 था।
अच्छा अच्छा, इतनी एहतियात के बावजूद, इतने अच्छे सिस्टम के बावजूद, तो क्या सबसे बड़ी क्या वजूहात होती है? कुछ तो आपने बता दी थी, तो क्या यही वजूहात इन ट्रैफिक हादसात की हैं?
स्नो है जी, स्नो है, आइस है, लोग यहाँ पे 4x4 ले लेते हैं, समझते हैं कि इनको कुछ नहीं हो सकता, फिर उनको गाड़ी हैंडल करनी आती नहीं है, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो उससे गाड़ी स्लिप होती है, स्किड होती है, खुद का अपना भी नुकसान करते हैं, लोगों का भी करते हैं।
अच्छा 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 अच्छा, फिर इन्होंने ये पूछा, अदनान साहब ने पूछा कि क्या एक्सीडेंट में अगर कोई फौत हो जाए तो क्या उसके रिश्तेदार सजा माफ कर सकते हैं या सिर्फ रियासती जज ही सजा माफ कर सकता है?
रियासती जज करते हैं, सारे फैसले वहां पे होते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो और ट्रैफिक सर्जेंट के इन्होंने पूछा अदनान साहब ने कि इख्तियारात क्या होते हैं?
उनके पास हर चीज का अख्तियार है, वो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक ले सकते हैं, आपकी गाड़ी कंपाउंड कर सकते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये थे समीउल्ला ने चित्राल से पूछा कि क्या अमेरिका में ऑटो रिक्शा टैक्सी वगैरह के लिए कोई रूल्स हैं जिनके तहत वो पैसेंजर्स को उठाते हैं या उनके लिए कोई नो एंट्री एरिया भी है?
बिल्कुल है, रिक्शा तो यहाँ पे नहीं होते, टैक्सीज के लिए काफी जगह है जहाँ पे आप टैक्सी नहीं खड़ी कर सकते या वहाँ पे आप टैक्सी नहीं लेके जा सकते। अच्छा। आपके पास बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए टैक्सी का और वहाँ पे आपने परमिशन लेनी है, तब जाके आप वहाँ से पैसेंजर्स को उठा सकते हैं और ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं।
और उनके लिए कोई नो एंट्री एरिया है?
नो एंट्री एरियाज भी हैं, मुझे एसच मालूम नहीं है, लेकिन हैं काफी जगहों पे टैक्सियाँ नहीं जा सकती।
अच्छा,
यहाँ तक के रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे आप टैक्सी खड़ी नहीं कर सकते, अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो टैक्सी आप कहीं और खड़ी करके वहाँ आप टैक्सी नहीं लेके आ सकते।
तो बेहद शुक्रिया, क्या है हमारी आज की मेहमान सितारा खान, आपने हमारे फेसबुक के जो लिसनर्स थे उनके सवालों के जवाब दिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ड्राइविंग की तरबियत देने और ड्राइविंग लाइसेंस देने और दिलवाने वाले एक इदारे द स्टार ड्राइविंग स्कूल की मालिक और एक माहिर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सितारा खान, जो गुज़िश्ता 14 साल से हजारों लोगों को वर्जीनिया की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने में एक अहम किरदार अदा कर चुकी हैं और एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारी मेहमान सितारा खान एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक फोटो स्टूडियो एस के स्टूडियोज की मालिक भी हैं और यहाँ वर्जीनिया, मैरीलैंड और वॉशिंगटन DC में मुख्तलिफ समाजी, खुसूसी तौर पर शादी ब्याह की तकरीबात के मौके पर फोटो शूट्स भी करती हैं। और सवाबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली और यहाँ वर्जीनिया में गुज़िश्ता 16 साल से मुकीम हमारी मेहमान सितारा खान पेशावर यूनिवर्सिटी के IT के शोबे से हार्डवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ हासिल करने वाली पहली खातून भी हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/YasminJamilVOAUrdu। गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं। सितारा खान, आपसे अब हम बात करेंगे आपकी जिंदगी के दूसरे प्रोफेशन की और वो है फोटोग्राफी का। तो ड्राइविंग स्कूल और फोटोग्राफी दो मुख्तलिफ शोबे हैं। आपका पहला शोबा ड्राइविंग स्कूल है या फोटोग्राफी?
फोटोग्राफी जो थी वो मेरी हॉबी थी और उसको प्रोफेशन, थोड़ा हल्का फुल्का प्रोफेशन भी बना लिया।
अच्छा, तो कैसे बन गया ये प्रोफेशन?
क्या शौक था? बस मुझे बचपन से ही शौक था पिक्चर खींचने का। तो ऑब्वियसली अमेरिका में आपको पता है कि एक जॉब से गुजारा नहीं होता। उस ड्राइविंग स्कूल के साथ साथ, क्योंकि वीकेंड पे मैं फ्री होती थी, तो मैंने साथ में हल्की फुल्की फोटोग्राफी भी शुरू कर दी।
अच्छा अच्छा, तो ये अब आपका एक साइड बिजनेस है एक तरह से, मेन बिजनेस आपका स्कूल ही है?
हाँ, मेन बिजनेस मेरा ड्राइविंग स्कूल है।
अच्छा, तो क्या इसका स्कोप है इस शोबे में खवातीन का खास तौर पर, और क्या आप समझती हैं कि ये ऐसा बिजनेस है कि जिससे पूरा घर चल सके?
बिल्कुल चल सकता है अगर आप उसको पूरी तरीके से टाइम दें। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये काम, तो अगर आप पूरी तरीके से इसको टाइम दें तो जरूर बिल्कुल चल सकता है।
अच्छा अच्छा, तो इससे बेहतर कि हम आपसे पूछें कि आप किस किस्म की फोटोग्राफी करती हैं। इफ्तखार साहब कराची से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो देखते हैं इफ्तखार साहब क्या पूछ रहे हैं इस वक्त। जी इफ्तखार साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, मैं आपसे एक टिप अर्ज कर रहा हूँ।
जी जी,
आप अपने सीखने वालों को और जो सुनने वाले हैं वो भी इससे मुस्तफीद हों, वो ये है कि टायर में हवा जो है वो मैक्सिमम अगर आपने 35 पाउंड रखते हैं तो इसको 5 पाउंड कम रखें, तब उसमें फायदा ये होता है कि गाड़ी की ब्रेक जो है वो बेहतर तरीके से लगती है और उससे चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो सितारा खान, आप तायद करेंगे इनकी इस टिप से?
बिल्कुल, हमारे हर गाड़ी पे एक स्टिकर होता है ड्राइविंग साइड पे। अगर आप दरवाजा खोलें तो नीचे स्टिकर होता है और उस पे कोल्ड टायर प्रेशर एंड वार्म टायर प्रेशर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्दियों में हम टायर प्रेशर थोड़ा सा कम रखते हैं, ज्यादा रखते हैं सर्दियों में।
अच्छा।
क्योंकि टायर का प्रेशर कम हो जाता है ठंड में, तो उसमें हमें ज्यादा रखना पड़ता है, और गर्मियों में हम लोग 2-3 pounds उसका PSI जो है वो हम कम रखते हैं।
शौकत अली अंजुम आज डहरावाला से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो आपके लिए आज क्या सवाल लेकर आए। जी शौकत साहब।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
जी वालेकुम
सलाम। वालेकुम सलाम।
शौकत अली अंजुम डहरावाला से अर्ज कर रहा हूँ। पहले तो मैं सारा खान साहबा को सलाम अर्ज करता हूँ, और उसके बाद मेरा सवाल ये है, क्या अमेरिका में नाबीना आदमियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो स्टिक तोड़ती हुई इंसान को रोनती हुई बस निकल जाती है, कोई ख्याल नहीं रखती। क्या अमेरिका में ऐसी की है, وہ جس کو ڈسٹینس بتا دیا جائے اور وہ اس کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا دے گی. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
جی ستارہ صاحبہ جلدی سے ان کا جواب دیجیے. ہمارے ساتھ زاہد بھی موجود.
بہت اچھا سوال ہے. یہاں پہ نابینا جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سائنز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان اس ایریا میں ایک نابینا پیڈیسٹرین رہتا ہے.
اچھا اچھا.
اور ان کے لیے ٹرینڈ کتے بھی ہوتے ہیں, ٹرینڈ کتا ہوتا ہے ان کے ساتھ اور وہ ان کو اپنے جگہ پہ ان کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچاتا ہے.
اور ویسے بھی اگر کوئی ضرورت پڑے تو یہاں پر ہر وقت والنٹیئرز موجود ہوتے ہیں نابیناؤں کو سڑک کراس کرانے کے لیے.
جی بالکل.
زاہد ہمارے ساتھ مردان سے موجود ہیں. جی زاہد صاحب آپ کا کیا سوال ہے ستارہ خان سے؟
جی سب سے پہلے تو بہن آپ کو اور ستارہ خان بہن کو بھی میرا سلام پہنچا. ہاں سلام. کیا بات پوچھنا ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں ادھر اتنے زوردار ہارن لگتے ہیں گاڑیوں میں کہ اگر میں مردان سے ہارن بجا دوں تو سوابی میں سنا جا سکتا ہے.
سوابی میں آپ پتہ ہے ستارہ خان سوابی سے آئی ہیں, وہ سارے ہارن سن سن کے جو وہاں بجاتے ہیں مردان میں.
بالکل
سن لیا نا اس لیے سوابی کا نام لیا. اور کوشچن میں کوشچن میرا یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں, ابھی آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ 70 سال ایک خاتون کو ہم نے لائسنس دیا, تو آپ اس کا نظر ٹیسٹ بھی کراتے ہیں یا نہیں کراتے؟
ہاں بالکل, ان کی نظر کی ٹیسٹ ہوتی ہے, ان کا ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم لوگ ان کو لائسنس ایشو کرتے ہیں.
تو بہت شکریہ زاہد مردان صاحب اور شوکت علی انجم صاحب. افتخار صاحب کراچی سے, افتخار صاحب نے سوال کیا تھا. آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گلرخ آج ہمارے لسنرز کو لے رہی ہیں, کالرز کو لے رہی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا سوال ستارہ خان کے لیے آ رہے ہیں. جی آصف صاحب کہاں سے؟
جی میں چکوال پاکستان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی نئی ڈرائیونگ سیکھی ہے میران گاڑی پر, اور گاڑی بھی لی ہے. جب گاڑی کو بیک کیا جاتا ہے تو شیشوں کی مدد سے بیک کرنا چاہیے یا خود سر باہر نکال کر ٹائر کو دیکھنا بہتر ہوتا ہے؟
جی ستارہ
بالکل 360 degrees ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا خود سے دیکھا کریں, کیونکہ شیشوں میں آپ کے پاس بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں جو آپ کو شیشے کے تھرو نہیں نظر آتے. تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ پیچھے مڑ کے بھی دیکھیں اور مطلب ہر جگہ دیکھیں. 360 degrees میں آپ کو ہر جگہ دیکھنا پڑتا ہے, وہ زیادہ بہتر رہتا ہے.
آصف یاسین جہانگیرہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. جی آصف صاحب کیا سوال آپ کا؟
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
یہ ستارہ خان صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ سوابی سے ان کا تعلق ہے تو کائنڈلی ذرا یہ بھی بتا دیں کہ سوابی کی کس چیز سے ان کا تعلق ہے. ماشاء اللہ اتنے پہنچی ہوئی ہیں تو میں تو بڑا حیران رہ گیا.
اچھا جی بتانا چاہیں تو بتا دیں. ویسے بڑی اپنے یعنی پشاور یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہیں اور آئی ٹی کی پہلی خاتون ہے جہاں سے انہوں نے ڈگری لی تھی پشاور یونیورسٹی سے. تو ستارہ آپ کیا جواب دیں گی ان کو؟
مجھے سوال سمجھ نہیں آیا.
خاص علاقہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ کون سا علاقہ ہے جہاں ستارہ خان نے جنم لیا؟
اچھا جن میں ٹوپی سے ہوں جی. سوابی میں ٹوپی ہے, چھوٹا سا گاؤں
ٹوپی سے. اچھا اچھا.
ہاں جی.
اچھا تو بے شکریہ آصف, آپ نے جہانگیرہ سے ٹیلی فون کیا تھا. اور اب گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے آپ کی دوسرے شعبے کا, آپ کی فوٹوگرافی کرتی ہیں آپ, تو شادی بیاہ کی تقریبات کو آپ کہتی ہیں آپ کور کرتی ہیں, تو پاکستانی شادیوں کو کور کرتی ہیں یا اور لوگوں کی بھی, دوسرے لوگوں کی بھی کرتی ہیں؟
ملٹی کلچرل ہے, پاکستانی بھی کافی ہیں, انڈین شادیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کور کر لیتی ہوں, جو یہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان کی بھی شادیاں ہم لوگ کور کرتے ہیں.
اچھا تو فوٹوگرافی کا سوال پھر ایک طرف. تنویر ہیں ڈی آئی خان سے, وہ بھی آپ کے لیے کوئی سوال؟ لیکن گلو کہہ رہی کہ نہیں, ان کی تو کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ہاں کچھ جو آپ کہہ رہی تھیں کہ کیا تقریبات میں کیا فرق ہوتا ہے, آپ نے اگر دیکھا کہ جو نہیں. جی گلرو کہہ رہی نہیں سوال نہیں چلے گا. مرید خان میاں والی سے ہمارے ساتھ ہیں. مرید خان صاحب جی کیا سوال ہے آپ کا ستارہ خان سے؟
السلام علیکم جناب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت خیال سے بات کر رہا ہوں. تو یہ جو عورتیں گاڑی چلا رہی ہوں نا, تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں, تو وہاں بھی امریکہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے؟
کون پریشان ہو جاتا ہے؟
لوگ جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ پریشانی کی بات ہوتی ہے اگر چوٹ لگ جائے, ورنہ यहाँ पे हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है, बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। तो परेशान इसीलिए कोई होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बस अपनी इंश्योरेंस की जो डिटेल्स होती हैं वो दो लोगों में हम एक्सचेंज होती है, और उसके बाद फिर इंश्योरेंस वाले आपकी गाड़ी मरम्मत करके आपको वापस दे देते हैं।
सुलेमान हमारे साथ मौजूद है और कहाँ से वो खुद बताएंगे। जी सुलेमान साहब।
जी मैडम साहब, आपने तो पढ़ा दिया हम लोगों को, बहुत कुछ पढ़ा दिया, बहुत मेहरबानी मैडम साहब। नजीजा बाजी को आपको सबको बहुत प्यार भरा सलाम।
अच्छा, सलाम करने के लिए आपने फोन किया, कहाँ से
हैं? वालेकुम सलाम।
मैडम साहब, मैंने पूरा प्रोग्राम पहले सुना नहीं है, जैसे प्रोग्राम बहुत आते हैं नजीजा बाजी का, जनाज बाजी का, बेगम जिलानी साहब का, सबका
बहुत शुक्रिया। इनायतुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। जी इनायतुर रहमान साहब, कहाँ से?
सर मैं मलकन गर्दी से बात कर रहा हूँ।
क्या सवाल है आपका?
को सलाम देता हूँ।
वालेकुम सलाम जी, सवाल आपका?
हमारा सवाल ये है कि मैं खुद ड्राइवर हूँ, यहाँ पे जो है ना हम पहले चलाते थे, पुलिस हमसे रिश्वत लेते थे, रूटीन बंद रही।
आपकी बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, समझ नहीं आ रही है। माजरत खाए कि आपका सवाल हम समझ नहीं पाए, तो हम जवाब कैसे दें। फिदा मोहम्मद एबटाबाद से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। जी फिदा मोहम्मद साहब।
मैडम सलाम अलैकुम। जी फिदा बोल रहा हूँ। मैं भी काजी के साथ जो डैम बना हुआ है उसका विलेज का इफेक्टिव हूँ, टोपी के साथ ही है मेरा गाँव, तो एबटाबाद शिफ्ट हो गया। मेरे सवाल सारा बीबी से ये पूछना है की ये जो शादी ब्याह की जो ओकेजन में इनके वो फोटोशूट शॉर्ट लेती है, तो मैंने पूछना ये कि जो मल्टी कल्चरल वो वहाँ पे मामला है, तो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में जो बेसिक जो कल्चर होते हैं, मुख्तलिफ रसूमात होती हैं उसमें, और वहाँ की बिजी लाइफ में कोई फर्क है? वहाँ पे जो नेचुरल जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो लोग वहाँ पे शादी होटलों में होती है, तो वो मेहंदी वगैरह की, हाँ, चावल फेंकना और मामला, तो
वो तमाम रसूमात सितारा बताइए कि क्या सब वो रसूमात यहाँ भी चलती है जो पाकिस्तान और इंडिया में चल रही होती है?
बिल्कुल होती है। हमारी शादियाँ यहाँ पे बहुत कलरफुल और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन जो यहाँ पे अमेरिकन शादियाँ होती हैं वो एक दिन की होती है, बाकी हमारी वही तीन दिन मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है, और फिर उसके बाद बारात है, फिर वलीमा है, उससे पहले संगीत के प्रोग्राम चल रहे हैं, माइयों हो रही हैं, ढोलकियां हो रही हैं, तो हमारा 10-10 दिन का शादी का प्रोग्राम
चलता है। जी यहाँ भी पाकिस्तान और इंडिया बना लेते हैं लोग। अच्छा, सनाउल्ला बलोचिस्तान से हमारे साथ हैं, वो उनसे पूछते हैं, वो क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सनाउल्ला साहब।
मैडम क्या खैरियत?
अल्लाह का शुक्र, बेहद शुक्रिया आपका कॉल करने का।
आपके मेहमान सवाल है जो ड्राइविंग के बारे में बात कर रहा था पहले, वो मैं सवाल ही कि उधर अमेरिका में और कोई पाकिस्तानी ड्राइविंग करे तो उसका टाइम फंक्शन होगा या पाकिस्तान?
क्या जरा दोहराइए सवाल।
मैडम अगर कोई पाकिस्तानी उधर अगर वो गाड़ी चलाए, मतलब उसका तनख्वाह पाकिस्तान कितना होगा?
क्या चलाए?
गाड़ी जो गाड़ी टैक्सी मैक्सी कोई,
तो
उसका तनख्वाह पाकिस्तान कितना होगा मैडम?
अच्छा, टैक्सी चलाए तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी? सितारा
डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे टैक्सी चलाते हैं। यहाँ से लोग जो हैं दिन के $100 भी बनाते हैं और दिन में $500 भी बना सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से काम कर रहे
हैं। अताउर रहमान मालाकंड से हमारे साथ हैं। जी अताउर रहमान साहब।
हेलो जी मैडम, हम आपको सलाम देते हैं।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सवाल आपका?
हमारा सवाल ये है कि हम खुद ड्राइवर है पाकिस्तान में, हम ड्राइवरी करते हैं वहाँ भी, हमारे से पुलिस रिश्वत लेते, तो अमेरिका में ये कानून है कि नहीं, वहाँ रिश्वत नहीं चलते?
रिश्वत का कौन सा कानून होता है?
नहीं, कानून तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि जब यहाँ पे पुलिस आपके पास आती है तो उनकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही होती है, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश भी नहीं है कि यहाँ की पुलिस आपसे रिश्वत ले।
अच्छा, बेहद शुक्रिया। टेलीफोन कॉलें बहुत आ रही हैं, गुलरुख थक गई हैं कॉलें लेते लेते। तो एक सवाल फेसबुक का रह गया था, मोहम्मद हुसैन ने पूछा था कि सितारा खान, आप अमरीका में पाकिस्तान के लिए क्या कर रही हैं और क्या कर सकती हैं?
मैं देखिए ना जी, मैं यहाँ पे लेडीज के लिए हेल्प कर रही हूँ कि यहाँ की जो हमारी पाकिस्तानी खातून हैं उनको अपने आप को वो पैरालाइज ना समझें और वो गाड़ी चलाएं और अपने दिन भर के जो काम है वो कर सकें।
नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या करती हैं पाकिस्तान के लिए, आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया?
میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ گڈ کوشچن. میں نے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہوں میں یہاں پہ بیٹھ کے, جو یہاں پہ امریکی خاتون کرتی ہیں ان کے شانہ بشانہ چل رہی ہوں, اور یہ پروف کر رہی ہوں کہ ہم پاکستانی عورتیں پیچھے نہیں رہ سکتی, ہم نے رہ بھی نہیں, ہم پیچھے نہیں رہیں گے.
کیونکہ بہت سے ہم نے کچھ انٹرویوز کیے تھے فیس بک سوری پروگرام میں, جو یس ایکسچینج اسٹوڈینٹس آتے ہیں تو ان سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ کیا پاکستان میں گاڑیاں ہوتی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم سننے والوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں گاڑیاں ہوتی ہیں بلکہ وہاں کے جو گاڑیاں چلانے والی خواتین ہیں وہ یہاں آ کر گاڑیاں چلانا سکھاتی ہیں, اور ہزاروں لوگوں کو سکھا چکی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو سکھانے کا ارادہ رکھتی ہیں. اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی خواتین جب کسی شعبے میں آگے بڑھتی ہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا, ان کے ٹیلنٹ کو کوئی دبا نہیں سکتا, اور اس کی ستارہ خان ہماری آج اس کی ایک مثال ہے. تو جو آپ جو خواتین اس وقت ہمارا پروگرام سن رہی ہیں ان کو کچھ تھوڑی سی مختصراً اپنی کہانی بتائیے ستارہ خان, کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا جد و جہد کی اور کیوں کی؟
جدوجہد اس لیے کی کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم ویئر. میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے یہ نہ لگے کہ میں نے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں اور یہاں تک مطلب کیسے پہنچے. رہی تو پیچھے مڑ کے دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ میرا جو ہارڈ ورک تھا, جو محنت تھی, وہ الحمدللہ رنگ لائی.
اور جی جی, اور کیا کہنا چاہیں گی وہ خواتین جو قدامت پسند گھرانے, آپ کا تعلق ہے قدامت پسند گھرانے سے تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اسٹرگل کی اور آپ نے تمام جو رسومات تھیں یا جو قیود تھیں عام زندگی میں معاشرے پر پاکستان میں جیسے کہ ہوتی ہیں ان کو توڑ کے آپ یہاں تک پہنچی, تو کیا کہیں گی ان خواتین سے, ان بچیوں سے جو ایسے گھرانوں سے جن کا تعلق ہے, جن کو کوئی اجازت نہیں باہر نکلنے کی, خاص طور پر گاڑیاں چلانے کی, تو کیا پیغام دیں گی آپ ان کو اس وقت؟
میں ان کو پروموٹ کروں گی کہ بالکل مطلب گاڑی چلانے بہت ضروری ہوتی ہے, اور آج کل کے دور میں تو بہت ضروری ہو گیا ہے. بچے ہیں ہمارے آگے سے, ان کو اسکول لے جانا, ان کے لیے کام کرنا, پھر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہر خاتون کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے.
اور ان کے گھر والوں کے لیے کیا پیغام؟
ان کے گھر والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پلیز ان کے اوپر بھروسہ رکھیں, ان پہ ٹرسٹ کریں اور ان کو کرنے دیں کام
کرنے دیں, تاکہ
کیونکہ وہ ہاتھ بٹائیں گے آپ لوگوں کا.
بالکل, اگر گھر کی کوئی خاتون, گھر کی کوئی لڑکی کچھ تعلیم حاصل کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو ایک گھرانہ پورا آگے بڑھتا ہے, اور اس کے آنے والی نسلوں کو وہ آگے بڑھا کر رکھتی ہے. تو اس کے لیے خدا کے لیے آپ اپنی گھر کی خواتین کو اجازت دیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں, ان کو اجازت دیں کہ وہ جاب کر سکیں, ان کو اجازت دیں کہ وہ بزنس کر سکیں, اور ان کو اجازت دیں کہ وہ گاڑیاں بھی چلا سکیں اور چلائیں. بہت شکریہ ستارہ خان, آج کے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں. اور اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ فیس بک پر ہم نے ایک فیس بک کارنر اب شروع کر رہے ہیں ہردم رمائے زندگی کے فیس بک پیج پر, جس کی نگرانی کر رہی ہیں ہماری انٹرن ماریا ناصر. وہ آپ کی تمام سوالات اکٹھے کریں گی اور وہ پہنچائیں گی ہمارے مہمانوں تک اور ان کے جواب حاصل کریں گی. تو آپ ہمارے فیس بک پیجز پر نظر رکھیے گا اس کارنر کے لیے, اور اس وقت ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.